अब देखिए कि आज हम किसी को थोड़ा सा दीन का काम करता देखे ना, तो हम कहते हैं बस ये मुस्तजाबु दावात बन गया, अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते अन्ना दी मोड़दा नहीं। कहते हैं लोग हज़रत नूह की तो अल्लाह ने मोड़ दी। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, अल्लाह चाहे तो नबियों की सुने, अल्लाह चाहे तो ना सुने। ना तो हज़रत नूह को गुस्सा आया, ना कोई एटीट्यूड दिखाया, ना पाँव पटखे, कोई इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की कि जिसके बाद वो कह जाओ फिर आज के बाद मैं नहीं करता तुम्हारा काम। आज तो हम अल्लाह के साथ भी बिगड़ने लगते हैं और बंदों के साथ भी बिगड़ते हैं। इतनी खिदमात की, इनको तो हमारी कदर ही नहीं थी। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दे। आज हमें ज़रूरत है काम करने की, अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें भी डूब जाएंगी, क्योंकि मादा परस्ताना सोच कभी भी इंसान को अल्लाह के हुक्मों पर जमने नहीं देती। अपने बच्चों पे नज़र रखें, अगर उनकी ज़रा सी भी दोस्ती किसी ऐसे इंसान के साथ है जो अल्लाह और इस्लाम का दुश्मन है, तो उन दोनों को बदलने की कोशिश करें। तूफ़ान नूह क्या था? क़यामत सुग़रा। जो यहाँ हुआ है ना, यही क़यामत के बाद होगा। कई नेक लोगों की औलादें जहन्नमों में जा रही होंगी, कई हिदायत से भटके हुए लोगों की औलादें जन्नतों में जा रही होंगी। अल्लाह का कानून बड़ा बेलाग है, इसलिए हमेशा इस बात की दुआ करें कि अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। अब ये किससे सुनाकर नबी सल्लम से कहा जा रहा है, आयत नंबर 49 से। तिल्क मिन अंबाइल ग़ैबि नुहीहा इलैका मा कुंता तअलमुहा अंता वला कौमुक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की ख़बरें हैं जो हम आपकी तरह वही कर रहे हैं, इससे पहले ना तो आप इनको जानते थे और ना आपकी कौम। बस सब्र करो, इंजाम कार मुत्तकियों के हक में है। देखिए यहाँ कितनी बड़ी दलील है कि जब तक अल्लाह अपने नबी को कोई बात नहीं बताता था, आपको भी खबर नहीं होती थी। और आद की अब एक और कौम है, कौम आद। यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, कौम नूह से कितने लोग बचे? 60 से 70 लोग कश्ती में बैठे। वो जो पेयर्स लिए थे ना, फिर उसी से जनरेशन शुरू हो गई। दरख्तों के, पौधों के, इस तरह के पत्तों, मतलब हर तरह के जानवरों के भी कुछ रख लिए गए। अच्छे लोग थे तो बचे थे ना। कुछ अरसा गुजरने के बाद वो बचे हुए लोगों की नस्ल में फिर कुछ ख़राब लोग पैदा हो गए और कौम याद बन गई। ये मुराद है इधर के, कहते ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो यहाँ भी यही हुआ। जब फिर दोबारा बिगाड़ हुआ, कुछ अरसा तो ठीक रहे, इतनी बड़ी निशानी देख चुके थे, अब जब ज़रा सी बदले तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उनकी तरफ अल्लाह ने एक और नबी को भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, और यही है सूरत हूद। और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा, उन्होंने कहा बिरादराने कौम अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा इसके सिवा नहीं, तुमने महज झूठ घड़ लिए। यहाँ देखिए नबियों की दावत का नुक्ता आगाज़ क्या था? अकीदा, ताल्लुक बिल्ला। हम कहते हैं अकीदे की बात ना करो, लोगों को तौहीद की बात ना करो, बस नेक अमल बताओ, ये पढ़ लो इतना सवाब, ये कर लो इतना सवाब। आप बताइए किसी मालिक को अगर आप देखें तो वो पत्तों पर काम करे और जड़ों को छोड़ दे तो पौधा नहीं पनपेगा ना। तो याद रखिए, दीन के पौधे में पहले जड़ें बननी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को अल्लाह का बंदा समझें, तकदीर पर राज़ी रहें, अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के साथ पैदा किया इस पर रखें। फिर जब आप लोगों को रब याद आ गया, रब की बात समझ आ गई, तो उसके बाद बाकी बातें कर मनवानी को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। फिर उसके बाद क्या कहा? तुमने तो महज झूठ घड़ रखे। ये उस वक्त की सोसाइटी पर तनकीद थी कि तुम्हारे तौर तरीके या जो दीन के नाम पर तुम काम कर रहे हो, ये दुरुस्त काम नहीं है। ऐ बिरादरान कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो इसके ज़िम्मे है जिसने मुझको पैदा किया, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? अजर में तारीफ़ भी होती है और तनकीद भी। तो अंबिया कराम यहाँ इस जुमले से मुझे आपको एक सबक दे रहे हैं कि पहली बात के दीन के काम को प्रोफेशन नहीं बनाना, दीन का काम करके पैसे नहीं लेने, क्योंकि दीन के पैसे लेने के बाद दीन की बरकत और खैर चली जाएगी, तासीर ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, इधर से क्या पता चलती है कि लोगों की तारीफ़ और तनकीद से बेनियाज होकर हक बात करते रहें, कहते रहें, और किसी किस्म का कोई बेनिफिट लेकर अगर आप अल्लाह की बात को आगे ले जाएंगे, तो आप याद रखिए कि अल्लाह से अजर तो मिलना तो ना मिलना बात की बात है, लोगों से भी आपको वो कुछ नहीं मिलेगा जो कि मिलने की आपको उम्मीद थी। बिल्कुल बेनियाज हो जाएं। फरमाया, क्या तुम अक्ल से ज़रा काम नहीं लेते? और ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी चाहो। आप देखिएगा तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ ज़हन बनाए जा रहे हैं। वतूबु इलैही, उसकी तरफ तो माफ़ी चाहो और इसकी तरफ पलटो, क्या फ़ायदा होगा इस्तग़फ़ार का? वो तुम पर आसमान के धाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मज़ीद कुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरिमों की तरह मुँह न फेरो। यहाँ बैठे बैठे दुआ कीजिए अपने गुनाहों की माफ़ी, सुबह मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि आज के बाद इंशाल्लाह हर पारे के बाद या पारे के दौरान कहीं भी हम इस्तग़फ़ार की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब हम तकरीबन 12 पारे पढ़ चुके हैं, अब अच्छे बुरे का फ़र्क काफ़ी हद तक पता चलने लगा है। तो जो चीज़ रुकावट बनती है ना, वो गुनाह है। तो अपने लिए मैं भी और आप भी अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। उन्होंने जवाब दिया, खुद तो हमारे पास कोई सरीख शहादत लेकर नहीं आया, और ना हम तेरे कहने पे अपने इलाहों को छोड़ देंगे, और ना हम तेरी बात पे ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। इसको हाईलाइट करिएगा, ये भी एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। लोग क्या कहते हैं, बुज़ुर्गों को नहीं बुरा कहना, ये अल्लाह वाले इनको कुछ कहोगे ना तो ये तुम्हारी मत मार देंगे। नबी सल्लम के बारे में भी लोगों ने ये एतराज़ घड़ा था कि जो बहकी बहकी बातें करते हैं ना, क्योंकि उनको तो ये बातें बहकी लगती हैं ना, इतनों को छोड़कर एक अल्लाह को पूछने लगे, तो यहाँ भी वही अंदाज़ है। कहते हैं ये तेरे दिमाग पे तो नहीं ना उस बिल्कुल कोई असर हो गया कि जो तुम हमें ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो। खुद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के साथ दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहराया है, मैं इससे बेजार हूँ। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ़ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे ज़रा मोहलत ना दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, और कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी इसके हाथ में ना हो। क्या मतलब? तकदीर। बेशक मेरा रब सीधी राह की तरफ बुलाता है, बस मेरा रब सीधी राह पर है, अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ वो मैं तुमको पहुँचा चुका। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल है कि जो बात बतानी थी वो बता दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम कर दिखाया। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम इसका कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे। धमकी है ना, लेकिन देनी पड़ती है उनको, नबियों को तो पता होता है। आज किसी दीनदार को इसकी इजाज़त नहीं है कि किसी आसमानी आफत को वो अजाब कह दे, या लोगों को कि और करो गुनाह, देखो तुम्हारे गुनाहों की शामत आ गई, या कोई सुबह उठ के कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में अल्लाह के नबी आए और कहा ये जो जलजला आया था ना ये अजाब था, इसकी इजाज़त नहीं है। अगली सूरत में हम ख्वाबों पर बात करेंगे, बड़ी प्यारी सूरत आने वाली है। तो याद रखिएगा, नबी नबी होता है और दाई दाई होता है, अपनी वुस्सत से ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगरान है। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से खुद को और इन लोगों को जो इनके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी, और एक सख्त अजाब से इनको बचा लिया। ये हैं आद, अपने रब की आयात से उन्होंने इनकार किया और इसके रसूलों की बात ना मानी, और हर जब बार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क़्यामत के रोज़ भी। अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम, सुनो आद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग, और चले गए ख़त्म। एक और कौम ज़मीन के तख्ते से मिटा दी गई। आप नोट कीजिएगा, हर कौम की जो कॉमन मिस्टेक दिखेगी ना आपको, एक तो शिर्क, एक रसूल की नाफरमानी, और फिर हर एक का कोई ना कोई एक जुर्म सामने नज़र आता है। और यहाँ ये जो बात कह दी हज़रत हूद ने कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी और अल्लाह ने उनको बचा लिया, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप अल्लाह के दीन का हक अदा कर देते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर बचा देगा। पूरी दुनिया में भी अगर तूफ़ान और बदतमीज़ियाँ और ख़राबियाँ और परेशानियाँ होंगी ना, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से अलग कर देगा। इसके बाद एक और कौम आती है दुनिया के नक्शे पे, वइला समूदा खाखुम सालेहा, और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, कॉमन थिंग, हमेशा लोगों को पहले रब से जोड़ें। कोई मौजू भी हो ना, मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। वैसे तो मैंने डिफरेंट मौजूद पे बहुत कम दर्स दिए हैं, क्योंकि मैं हमेशा रूट कॉज पे बात करती हूँ कि ये ठीक हो गई तो बाकी काम तो आसान है। यानी पर्दे पे और आमाल पे मैं बहुत कम दर्स देती हूँ, मोस्टली मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत और ज़िम्मेदारियों के एहसास पे होता है ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर मौजू पर अगर मुझे कोई देनी भी पड़े, मतलब अगर आप मुझे कहते हैं पर्दे पर दर्स दें, आप मुझे कहते हैं आप ऐसा करें कि गाने सुनने पर या म्यूज़िक की इस्लाम में क्या हैसियत उस पर बात करें, लेकिन आप पूरा लेक्चर सुन के देखिएगा, आखिरी मैसेज मैं आपको फिर भी यही दूंगी कि अब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहुन गैरु, क्योंकि मुझे पता है गाने सुनना तभी छुटेंगे जब अल्लाह की बड़ाई का एहसास होगा, पर्दा तभी होगा जब अल्लाह के आगे जवाबदेही का एहसास होगा। तो हमेशा लोगों को वो अल्लाह का कुर्ब दे दें, मोहब्बत होगी मोहब्बत में छोड़ देंगे गलत काम। अल्लाह का खौफ दे दें, खौफ में छोड़ देंगे, आप अपने आप को बीच में से निकाल दें। मेरा आपका कोई काम नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर चेक रखें कि अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं जी, कोई गुनाह छोड़ दिए, कुछ नेकियां हुई, नहीं, इट्स नॉट। क्योंकि नबियों की सुन्नत देखिए कितने बेनियाज हैं, और ना घर जा जा के देखते थे कि लोग यहाँ से उठ के घर में जाके क्या करते हैं, और ना आप और मैं देखा करें कभी किसी की कोई ऐसी खबर दूसरे तक ना पहुँचाया करें। कुरान सुनते हैं तो ये करते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो ये करते हैं, इनके बच्चे तो ये करते हैं, नहीं मैं आप चौकीदार नहीं है। क्योंकि जब कोई किसी के ऐबों के पीछे लगता है ना, अल्लाह उसके ऐबों के पीछे लगता है। तो बेनियाज रहा करें दूसरों से, अपनी फिक्र कीजिए। फिर फरमाया, वही है जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया, बस तुम इससे माफ़ी चाहो और इसकी तरफ पलट आओ, यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। करीब मुजीब, आपको पता है कि अल्लाह ताला के दो नाम हैं, आज आगे एक दे चुकी हूँ इसलिए और नहीं देती, वरना अल्लाह का नाम करीब भी सुनने के लायक है। और पीछे तो आप पढ़ चुके कि इज़ा साला कई बाद अन्नी फ़ैनी करीब, यहाँ मुजीब की बात है, कबूल करने वाला। आज भी शिर्क के दो बुनियादी जवाज़ हैं। जो लोग शिर्क करते हैं ना, ज़रा से इस नाम की रोशनी में समझ लीजिएगा, शिर्क क्यों करते हैं? कहते हैं कि अल्लाह तो दूर है तो बीच में बाबा जी को डालो, तो अल्लाह कहते हैं मैं करीब हूँ। एक और सबूत क्या देते हैं शिर्क का, कहते हैं बाबा जी को सुनाओ फिर ये अल्लाह को सुनाएंगे, क्योंकि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। और मिसाल क्या देते हैं, वही बादशाह और दरबारियों की कहानी, सीढ़ी और इमारत की कहानी, अल्लाह कहते हैं मुजीब। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 20वें पारे में, मैं युजीबुल मुस्तर्र ज़्यादा। तो याद रखिए कि अल्लाह के नामों को ना समझने की वजह से दुनिया में शिर्क होता है। एक गांव की किसी ने बात सुनाई कि किसी ने कहा कि दुआ कर लें, तो कहने लगी कि बाजी दुआ तो मज़ार पे जाके मांगते हैं। कहे हैं? कहती वो कैसे? कहते गांव के लोग, हम खुद तो नहीं दुआएं मांगते, हम तो पीर साहब के पास जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि अल्लाह से ये कह दें ये दुआ मांग दे, तो वो फिर वो दुआ मांग देते हैं, तो दुआ तो नहीं खुद मांगी जाती। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, करीब मुजीब। चले चंद सेकंड तक हम इस वक्त अल्लाह को करीब महसूस करें, और अगर करीब महसूस हो रहा है तो उसका कुर्ब पा लीजिए, मांग लीजिए अल्लाह से कोई अपनी मनपसंद चीज़। अल्लाह हू अकबर, बस सबसे कट के ख़ुद को रब से जोड़ लें। मुझे तो यही बात समझ आई है कुरान पढ़ के, हम दूसरों में खोए रहते हैं ना, इसीलिए परेशान रहते हैं। कौम का जवाब भी सुन लीजिए। अब देखिए नबी की दावत कितनी प्यारी, अल्लाह से जोड़ने वाली, और जवाब देखिए तानों तंजों और तीरों से भरा पड़ा। कालू या सालेह, उन्होंने कहा सालेह, इससे पहले तो तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कात वाबस्ता थी। अच्छा, कई लोग दीन पे आते हैं ना तो वो ये जुमला बोलते हैं, पहले मेरी दोस्तें मुझे इतना लाइक करती थी, मेरे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं होता था, पार्टीज़ के थीम मैं चूज़ करती थी, डेकोरेशन मेरी मर्ज़ी की होती थी, खाना कहाँ से आएगा इसमें तो मेरी राय चलती थी। अब क्या हो गया? अब वो कहते तू डेफ हो गई है, तू डल हो गई है, तू बोरिंग हो गई है। तो देखिए हज़रत सालेह को लोग क्या कह रहे हैं, तू कोई नासमझ तो नहीं था, तू तो बड़ा टैलेंटेड था, तेरे पे तो हमारी बड़ी नज़रें थी, तू तो बहुत कोई बड़ा काम करेगा, लेकिन अब क्या हो गया? क्या तू हमें इन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? देखिए जिसको उर्दू में कहते हैं ना धान के पान, बार बार पिछली कौमों की तान टूटती है बाप दादा के तरीक़ों पर। आप देखिए कि बहुत सारे लोग बाप दादा के नाम पर शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं, और ख़ुद को गलत चीज़ों में ले जाते हैं। कहने लगे तू जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहे इसके बारे में हमको सख्त शुबा है, शक, ये भी दावत के रास्ते की रुकावट है, और इसने हमें खिलजान में डाल दिया है। साले ने कहा है बिरादराने कौम, तुमने कुछ इस बात पर गौर किया? देखिए कितने ठंडे मिजाज के हजरत साले, अल्लाह हमें भी इतना ठंडा करते, कभी किसी की बात सुनकर गुस्से में ना आए, फिर आप उसको वाकई मौका देंगे कि वो और उभरे। वो गुस्से में है, ताना दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कभी तुमने गौर किया? अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर इसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, यानी नबूवत दी, इल्म दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं? ये है लोगों के ज़मीर को ज़िंदा करना। देखिए आप मैं दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं, आपके बच्चे भी होंगे, घर वाले भी होंगे, जब कुरान सुने तो फिर तड़प तो लग जाती है। अब आप तो बड़े दिल से कहते हैं बेटा नमाज़ पढ़ो, या अपने शौहर से कोई बात कहेंगे तो एकदम आपको लगता है वो गुस्से में आ जाते हैं ना, तो आप फिर और बुरा मानते हैं। लेकिन उस वक्त इस बात को सोचिएगा, दो चीज़ें हैं, एक है किसी के ज़मीर को ज़िंदा करना और दूसरा क्या है, किसी की गैरत को हवा देना। कभी अपनी तबलीग के दौरान किसी की गैरत को ना उठाएं, गुस्सा ना दिलाएं, ज़मीर को ज़िंदा करें। वो कहते हैं ना कि जो गैरत है या बंदे को जो चिढ़ होती है ना, ये एक शेर की तरह है, इसको सोए ही रहने दें। हमेशा लोगों की थॉट प्रवोकिंग करें, थॉट सोल सर्चिंग क्वेश्चन, उनके दिमाग अंदर हिलजुल शुरू हो गई। अरे वाकई ये तो हमें कह रहे हैं, लेकिन अगर वाकई अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो क्या होगा? और फिर और सवाल करते हैं, तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके, यानी अगर मैं तुम्हारी बात मान जाऊं, अल्लाह को नाराज़ कर दूं, तो तुम मेरे और किस काम आओगे सिवाय मुझे और खसारे में डालने के? ये बात क्या करें, कितना मीठा अंदाज़ है। बेटा आप मेरे काम आएंगे अगर मैंने आपकी बात मान ली, बेटा इस वक्त आप खुश हो जाएंगे कि अल्लाह मुझसे खुश होगा। अरे मेरी कौम के लोगों देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे अल्लाह की ज़मीन में चरने चुगने के लिए आज़ाद छोड़ दो, इससे ज़रा तारुस ना करना, यानी इसको हाथ ना लगाना, इसको छेड़ना नहीं, डोंट डिस्टर्ब इट, वरना कुछ ज़्यादा देर ना गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। इस पर साले ने इनको ख़बरदार किया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह बस लो, ये ऐसी भी आदत झूठी साबित ना होगी। आखिरकार हमारे फैसले का वक्त आ गया, तो हमने अपनी रहमत से सालिह को और इन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, और इस दिन की रसवाई से इनको महफूज रखा। एक जुमला नोट कर लें, रसूल किसी भी बस्ती में ऐसे ही होते हैं जैसे बदन में रूह। जब वो शहर से निकल जाते हैं ना, तो मुर्दा जिस्म की तरह बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। नबी का, या आज के दौर में आप कहिए कि किसी दीन वाले का, हक वाले का किसी बस्ती में होना उस बस्ती को अजाब से बचाता है। जब लोग उसको वहाँ से निकलने पे मजबूर कर देते हैं ना, तो उस कौम के दिन भी गिने जाते हैं। यही अब मक्का वालों के साथ होने वाला था। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि नबी सल्लम के मक्का से हिजरत करके मदीना जाने के बाद क्या हुआ था। मक्का में इतना ज़बरदस्त कहत पड़ा था, सूरह दुखान में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि उनकी आंखें उबल के बाहर आ गई थी, जानवरों की खाल और ओजरियाँ खाने पर मजबूर हो गए थे। तो ऐसे ही किसी अल्लाह वाले से चिढ़ नहीं रखनी चाहिए, क्या पता कि वो हमें अल्लाह ताला की पकड़ से बचाने का काम कर रहा हो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ ये जो ऊँटनी का जिक्र कहाँ से आया, तो थोड़ा सा इसको भी बात कर लेते हैं। इन्होंने मानना तो था नहीं, सीधी सी बात है, जिसको हिदायत की तड़प नहीं उसको क्या लगे ऊँटनी या बिल्ली या बकरी से। अब अपनी जान छुड़ाने के लिए कहने लगे कि ऐ साले तू नबी है, अच्छा ठीक है, फिर मुझसे तो आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, तुम ऐसा करो ये चट्टान, वहाँ एक चट्टान थी छोटी सी, रॉक, कातिबा नाम था उसका, कहते थे ये चट्टान फटे, फिर इसके अंदर से एक ऊँटनी निकले जिंदा, फिर हमारे सामने सामने वो बच्चा दे, तो फिर हम तुझे नबी मान जाएंगे। भाई ये नबी मानेंगे या जादूगर मानेंगे, शोबदाबाज मानेंगे? कभी नबी ने इस किस्म के अनयूजल दावे किए थे? लेकिन सिर्फ ना मानने की बात थी। हज़रत सालेह की नज़र अल्लाह पे थी, कहा अल्लाह ताला अगर इस काम से इनको हिदायत मिलती है तो तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू माँ के पेट से भी तो बच्चे को निकालता है ना, तो तू पहाड़ के पेट से निकाल दे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो चट्टान फटी, उसमें से एक ऊँटनी आई, खूब मोटी ताज़ी, अपने वजन से गिरती फिर रही है, लोगों के सामने उसे एक बच्चा दिया और बच्चा भी बड़ा हो गया। मान गए, डर गए, चंद दिन तक ठीक रहे। अब वो ऊँटनी जिंदा ऊँटनी थी, अब जाहिर उसको खाना भी था तो पीना भी था। जब वो किसी खेती में जाती सारी उसका चारा खा जाती, इनके जानवरों के लिए चारा ना बचता। पानी पीने आती तो वो उस कुएं का पानी पी जाती। अब एक दिन दो दिन मुरव्वत रखी, थोड़े दिन पकेंगे, ये क्या हो गया? अब आए मूसा हज़रत साले के पास, ये ऊँटनी ने तो हमारा जीना दोबर कर दिया। भाई अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, तुमने खुद मांगी है। और आखिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार दिया। इसमें बहुत बड़ा सबक है, बहुत सेंटिमेंटल बात है। बस दफ़ा हम अल्लाह से दीन के नाम पे कोई नेमत मांगते हैं, किसी काम की तौफीक मांगते हैं, हम कहते हैं अल्लाह हमसे कोई काम ले, हमें ज़रिया बना, और अल्लाह सारे हालात और असबाब दे देता है, तो फिर हम उसके तकाजे नहीं पूरे कर सकते। खुद से सोचें, क्या दीन का काम मेरे लिए आज साले की ऊँटनी बन गया? ज़ाहिर है दीन का काम करके होगा, अल्लाह के बंदों की खिदमत करके होगी। दुनिया में कुफर फैल रहा है तो इस्लाम फैलाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। उस वक्त फिर बच्चे, घर, कारोबार, जॉब, रिश्तेदार। और बाज़ लोग, जब मुझे ये बात पता चलती है तो मुझे तो यकीन नहीं आता। और वो क्या है, हमारे माँ बाप नहीं चाहते क्या पैसा करें। हमारी माँ कहती है तुमने बच्चे रोल दिए, तुम अपने घर को नहीं देखती, घर बैठ। मैं कहती हूँ किसी की, यानी मेरी माँ मुझे ये कह सकती है कि ये आपको पढ़ाना छोड़ दूँ? आप बताइए, वो तो दुआ करेंगी मैं पढ़ाऊँ और उनका सदका जारी हो। भाई आप अपनी माँ का सदका जारिया बन रही हैं, तो आपकी माँ कैसे आपके इस काम को बुरा कहेगी? हस्बैंड मना करते हैं, तो उनसे कहिए कि आप तो घर बैठे अजर ले रहे हैं, मैं तो कुछ कर करा के अजर लूंगी, आप तो मेरे साथ ही खामोश किस्म के साथी बन गए। तो याद रखिएगा, लोगों को एक अच्छा विजन दें, करें क्या, स्केप होल ना रखें। यानी आप कहें कि आप अपने दीन के काम को अपने लिए एक लूप होल बना लें। चूँकि क्लास में जाती हूँ घर नहीं साफ करूँगी, चूँकि क्लास में जा रही हूँ खाना नहीं पकेगा, और चूँकि चूँकि फिर बदनामी है, फिर तो वाकई आप दीन को बदनाम करें। दुआ करें, मैनेज करें, टाइम पे नज़र रखें, बच्चों को ट्रेन करें, मियाँ को बताइए कि हम सब एक बहुत बड़े काम पे लगे हैं और अल्लाह ने हमें चूज़ किया है, आज के दौर में चंद गिने चुने लोगों में हमारा नाम रखा है, आइए मिल बैठ के कुर्बानियाँ देते हैं। हज़रत इब्राहिम ने कुर्बानी दी, बीवी बच्चे को छोड़ दिया। इस तरह का माइंड सेट करें कि फिर आपके घर आपके लिए खुशी का ज़रिया बन जाए। अपने माँ बाप को बैठ के समझा दें कि अम्मी अब्बू आप तो खुश हो, आपके बच्चे आपके बेटे आपकी बेटी को अल्लाह ने एक नेकी का मौका दिया, दुआ करें कि करते रहे, और अल्लाह से दुआएं कीजिए कि वक्त में बरकत है। और यकीन करें, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, हम दीन को खुद बातें करवाते हैं, वरना दीन ऐसा नहीं है कि हमें खाने पकाने से रोके, घर साफ करने से रोके और अपने बच्चों को देखने से रोके। आज ही पढ़ चुके हैं हज़रत नूह का वाक़या। हज़रत नूह अल्लाह के कामों में, आप कहते हैं हज़रत नूह को देख के क्या पढ़ी, क्या मिला हज़रत नूह को, अपना बेटा डूब गया? नहीं, बड़े कामों के लिए बड़ी नज़रें होनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ ये बात करके अल्लाह ताला ने हम सबको एक सोच दे दी कि अगर तुम्हें अल्लाह ने नेकी के किसी मौके के लिए चुना है तो दो नफिल पढ़ा करो कि अल्लाह अब इसी पे रख। अब आप यहाँ आ रहे हैं तो आराम से तो नहीं आ रहे होंगे ना, कई लोग चल के आते होंगे, कई गाड़ियों में आते हैं, कई बेचारे राइड्स लेते हैं, कई ट्रेन लेते हैं, फिर बस लेते हैं, मुझे थोड़ा सा तो अंदाज़ा है। तो क्या ख्याल है, आपको इसका कोई अजर नहीं देगा? अल्लाह फ़ायदा भी देगा, अजर भी देगा, खैर भी देगा, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि बचते वही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत में आते हैं। अब देखिए, साले बच गए, हज़रत हूद बच गए, उधर हज़रत नूह बच गए, तो आखिरी अंजाम हक का होगा। इसीलिए फरमाया कि बेशक तेरा रब ही दरअसल ताकतवर है, असल ताकत उसकी और वो गालिब भी है। और जो दुनिया के पीछे पड़े हुए थे उनका हाल क्या हुआ? वख़ज़ल्लज़ीना ज़लमू सैखा, अब नबी निकले, कौम के ऊपर अजाब आ गया। कैसे रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था, तो एक सख्त धमाके ने इनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिसो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया वो कभी वहाँ बसते भी ना थे। और ऐसे अल्लाह फिर वाइप आउट कर देता है नस्लों को। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को बचा ले। आज आपको पता है नस्लों की नस्लें कट रही हैं, गाजर मूली की तरह मुसलमान कट रहे हैं इस वक्त। दादे भी गए, बाप भी गए, अब बच्चे भी तबाह हो रहे हैं। ये सज़ा है अल्लाह की। वो नबी की एक नाफरमानी करके पकड़े जाते थे, आज हम हज़ारों नाफरमानियाँ करके बचे हुए हैं, ये नबी की दुआ है। सुनो, समूत ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए समूत। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपनी पकड़ में न लाए। अल्लाह ने अगर किसी काम का आज के दौर में हमारे लिए फ़ैसला किया है, तो अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले। ख़ुद को अल्लाह की नज़रों से देखना शुरू कर दें, आप देखेंगे आपको ख़ुद पे प्यार आएगा। और कभी ख़ुद को बुरा ना कहा करें, मैं बेवकूफ़, मैं पागल, मैं चल्ली, मुझे तो अक्ल ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं। नहीं, आपको अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने आपको बहुत सारी अक्ल दी हुई है, और हमेशा अपनी इज़्ज़त करें ताकि दूसरे भी आपकी इज़्ज़त कर सकें। इसके बाद हज़रत इब्राहिम और उनके साथ ही साथ हज़रत लूत का किस्सा थोड़ा सा समझ लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बज़ाते ख़ुद वैसे ज़िक्र नहीं कुरान में आता जैसे कि बाकी नबियों का इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह आता है आइए सुनते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है, स्टोरीज़ है ना आज के सबक में, मज़ा आ रहा है? किससे कहानियाँ और स्टोरीज़ विद मॉरल्स, बच्चों को भी सुनाया करें एक एक कहानी, लेकिन उनको डराने के अंदाज में ना सुनाएं। देखिए, आप अपने बच्चों की उम्र के एतबार से उनको ये कहानी सुनाए ना, तो क्या फोकस करेंगे, कौम डूब गई, तबाह हो गई, मर गई। नेवर डू दिस। मैं आपको नसीहत करती हूँ, आप नबियों की कहानियाँ सुनाते हैं, सिर्फ वो कलील उम्मा आमना पे बात किया करें। देखो बेटा, थोड़े से थे फिर भी बच गए, देखो हज़रत नूह की कश्ती टूटी फूटी थी फिर भी बच गई, देखो हज़रत सवाले बच गए। वो डूबने वालों की बात ना करें, वो खराबियों की बात ना करें, बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग दें। तुम ये काम करो फिर तुम्हारे साथ ये होगा, तो फिर इंशाल्लाह उनके अंदर इंथूसिज्म आएगा, जोश और जज्बा आएगा। हज़रत इब्राहिम का जिक्र यहाँ इनडायरेक्ट है, कैसे? लगा जात रसुलना इब्राहिम बिल बुशरा, और देखो इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुँचे, कहा तुम पर सलाम हो। क्या कहा फरिश्तों ने आते ही? सलाम, हाय नहीं कहा, हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग, سلام کو عام کریں. حدیث میں آتف شس سلام, سلام کو عام کرو اور راتوں کو جاگو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کلچر کو عام کرنے والا بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, تم پر بھی سلام ہو. اب آپ بھی کہ وعلیکم السلام. کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی مہمانی کے لیے لے آئے. یہ کیا بات ہے, نہ پوچھا کیا کھائیں گے, کھانا تو اب کھا کے آئے ہوں گے, چائے کا تو وقت نہیں ہے, ٹھنڈے سے تو آپ کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. تو پھر آئیں بیٹھتے ہیں. یہاں سے مہمان نوازی کے ادب بھی ہیں. بی ہاسپیٹیبل, مہمان نواز بنیے, تاکہ اسلام کو پھیلانے میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مسلمان دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. خیر, مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. انہوں نے کہا, ڈرو نہیں, ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی. جیسے اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا, مردوں کے دوست آئے ہوں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ کون آئے ہیں. بیٹا پردہ ٹھیک کرنے کے بہانے ہی دیکھ لیتی ہیں کون سے انکل آئے ہوئے ہیں. تو خیر, یہ تو ویسی نہیں تھی, یہ اللہ کی نبی کی بیوی تھی. لیکن وہاں کھڑی تھی اور جب یہ باتیں ہوئیں تو وہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی, ہائے میری کم بختی, کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بڈھے ہو چکے ہیں. اللہ اکبر, 70-80 سال سے اوپر تھے دونوں شوہر بیوی اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے. فرشتوں نے خبر دے دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا. اب انسان تھے نا, حیرت ہوئی کیسے ہوگا بیٹا. اب آپ سوچیں نا, 80 ایئرس کی کوئی آنٹی ادھر بیٹھی ہیں اور ماشاء اللہ یہ خوشخبری مل جائے تو میرا حال ہے وہ تو گھر سے ہی نہ نکلے. یہ کیا ہو گیا, کیا منہ دکھائیں گے. ہے تو یہ انسانی فطرت ہے, خوشی اور حیرت اور مطلب عجیب چیز کا ایک خوبصورت سا مطلب اس میں ایک رنگ آپ کو دکھتا ہے. تو وہ کہنے لگیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. نہیں, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یاد رکھیے, نبیوں کے قصے پڑھ کے آپ کو اللہ کی قدرتوں پہ یقین آتا ہے. کہنے لگی, یہ بات تو بڑی عجیب ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. ابراہیم کے گھر والوں, تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. یہ ہیں برکتیں اللہ کے کام کی. ابراہیم اللہ کے رستوں میں لگے ہوئے تھے نا, اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور آج بھی اللہ ہر کام کرنے پہ قادر ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں رجوع کرتا تھا. ان تین صفات کو اپنے اوپر ڈھونڈیے. کیا میرے اندر حلم ہے؟ حلم کیا ہوتا ہے؟ کانٹینٹنس, سکون, ہائپرنس نہیں, اور وہ جس کو ہلو کہتے ہیں نا, انگزائٹی, تڑپ رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. کچھ لوگ تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھے نا, ایسا لگتا ہے زلزلہ آ گیا ہے, تڑپتے ہیں, اچھلتے, سیدھے بیٹھتے نہیں, کبھی ہاتھ میں فون, کبھی ادھر بیٹھتے, کبھی ادھر. وہ جائیں آپ کہتے ہیں شکر ہے آج کے زلزلے سے میں بچ گئی. سکون, پیسفل. کسی سسٹر نے, اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہ کہنے لگی, آپ بلاہر میرے شوہر کہتے ہیں کہ اب تم غصہ نہیں کرتی, حلیم جو ہو گئے. اور جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو پھر انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے نرم دل تھے. پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے باپ سے جھگڑا مول لے چکے ہیں بتوں پہ. پیچھے پڑھے, آگے پھر آئے گی بات. یہاں حضرت لوط جو ان کے بھتیجے تھے, ان کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے اور ابراہیم درد مند ہے. یہ کیا مکسچر ہے؟ یہاں تھوڑا سا سمجھیے گا. جب ہم اپنے خاندان برادری پہ کسی بات پہ تنقید کرتے ہیں نا, تو لوگ ہمیں کہتے ہیں ان کا تو دل ہی سخت ہو گیا, ان کو تو رشتے نبھانے ہی نہیں آتے. ابراہیم کو بھی ہم یہی ٹائٹل دے دیتے, نعوذ باللہ, نہ دیکھو خاندان کا خیال کیا نہ اس کا کیا. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ قوم پہ فرشتے آ رہے ہیں عذاب کی بات لے کر, ابراہیم بے چین ہے. یہ اصل میں خوبصورت کمبینیشن ہے. ایک مومن اندر سے بہت بہت سافٹ ہوتا ہے, دور بیٹھے شخص کو وہ بڑا سخت لگتا ہے, ہارڈ, بہت سٹبن ہے, خوف آتا ہے, روب بھی ہوتا ہے. آپ جتنا قریب آتے جائیں گے نا, آپ کو سافٹ لگے گا. جیسے آپ کبھی روٹی بنائیں نا, تو اچھی روٹی کس کی ہوتی ہے؟ جس کی اوپر سے خوب پکی ہوئی لیکن توڑو تو نرم. تو یہی اصل خوبی تھی نبیوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے. جب لوگ آپ سے دور ہوتے نا, ان کا بڑا روب ہوتا, خوف زدہ ہوتے. جتنا آپ کے قریب آتے, ہر بندے کو ایک یقین ہو جاتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ میرے سے پیار کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نرم بھی تھے اور سب سے بڑی بات, ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے. دعا کیجیے اللہ ہمیں یہ صفات دے دے. 3 سیکنڈ لے لیں, ایک ایک صفت پہ ایک ایک سیکنڈ دعا کر لیں. آخر کر ہمارے فرشتوں سے اس نے کہا، ابراہیم اس سے باز آ جا، تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھرتا۔ اور جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے۔ یہ تھی اصل میں ہومو سیکشل قوم جس کی اب پکڑ ہونے والی ہے۔ قال ھذا یوم عصیب، کہنے لگے آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ ان کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے عادی تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ بیٹیوں سے یہاں مراد عورتیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ خوب جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہومو سیکشوالٹی۔ وہ کہتے ہیں نا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ جب حرام کی عادت لگتی ہے نا تو حلال میں کشش نہیں رہتی، اور یہ آج چیز مشاہدوں میں اور رپورٹ سے ثابت ہے کہ جب مردوں میں یا لوگوں میں یہ برائی آ جاتی ہے نا ہومو سیکشول ہونا، تو ان کو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن نہیں رہتی۔ ایسے مرد اپنی بیویوں میں اٹریکشن نہیں رکھتے، اور نعوذ باللہ ایسی بیویاں مردوں کے قابل نہیں رہتی۔ تو جب حرام منہ کو لگتا ہے نا تو حلال میں کشش نہیں ہوتی۔ اور شیطان نے کیا کیا تھا، سورۃ الاعراف کو یاد کریں، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، حرام کو حلال بنا کے دکھاتا ہے۔ اس قوم کا بھی یہی حال تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر نہ ہوتا تو ہم کبھی مانتے بھی نہ کہ یہ فعل بھی قابل عمل ہے۔ فطرت کے خلاف، آپ دیکھیے فزیک کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک کام دیا ہے۔ جیسے میں کرسی پہ بیٹھی ہوں تو ٹیبل میرے سامنے ہے، کیا ٹیبل پہ بیٹھ کے کرسی پہ میں کام کر سکتی ہوں؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک شرٹ ہے اور ایک ٹراؤزر ہے، ہر چیز کو استعمال کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا اس میں ہر چیز کی ضرورت کے مطابق چیز رکھ دی۔ آپ کسی کو کھانا منہ میں ڈالنے کی بجائے کان میں چمچ ڈالتے دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ آنکھوں میں مرچیں ڈالتا دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ تو اسی طرح فطرت نے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ضروریات رکھی ہیں اس کو فطرت سے ہی پورا کیا جائے گا۔ ایسی تمام چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ اور آج کے دور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کل کسی نے ایک سٹوری شیئر کی تھی، آئی ڈونٹ نو صحیح ہوتی ہیں کہ نہیں، میں ڈرتی ہوں شیئر کرتے ہوئے، لیکن کینیڈا کی غالباً وہ سٹوری تھی کہ بچوں، ٹیچرس نے بچوں کو بھیجا کہ جائیے آپ لائبریری سے ایک بک پک کر کے آئے، اور ان کا ایک اسٹڈی ٹائم کا معاملہ تھا تو وہ بک لے جائیں اور آپ نے گھر جا کے پڑھنی ہے۔ اور وہ بچہ جو بک لے کر آیا، آپ بھی نہیں مانیں گے، اور اس کا ریفرنس وغیرہ سب لکھا ہوا ہے، سچ ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس پہ اس کہتے کہ گھر آیا تو جو ماں نے بک دیکھی تو اس کی چیخ نکل گئی، مائی چاچو از گے، کہا پاکستان کی چھپی ہوئی وہ بک ہے۔ اور اس میں انہوں نے چھوٹے سے بچے کو یہ میسیج دیا، سٹوری بک بنائی ہوئی ہے کہ میرے چچا جو ہیں وہ دوسرے مردوں عورتوں سے بہت فرق ہیں، اور وہ میرے، یعنی وہ اپنے دوست سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے میرے ابو اپنی امی سے محبت کرتے ہیں۔ ہڈن میسیجز، اس کے پورے پیجز اور اس کے وہ چیزیں ساری لنک پہ ڈلی ہوئی تھیں کہ آج اگر ہم مسلمانوں نے آنکھیں نہ کھولیں تو ہمارے بچوں کو۔ اب یہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے تو اپنے ملکوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ فیک ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن ہے یہ ٹریش۔ تو آنکھیں کھول کریں، اپنے بچوں کی بکس دیکھا کریں، ان کو دیکھیں۔ اور جو بچی، بچہ، لڑکی، لڑکا اس عمر کی تبدیلیوں کے دنوں میں اگر کوئی ایسی چیز اپنے اندر پائے تو وہ روزے رکھے اور شیطان سے بچے، اکیلے بیٹھنے میں رک جائیں، ایسی دوستوں کو پیچھے کر دیں کہ جو آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ اچھی بچیاں ایسی باتیں نہیں سوچتی، نہ سنتی ہیں، نہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا طریقہ رکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گندگیوں سے بچا کے رکھے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام ان کو بھی کہتے ہیں کہ تم ایسے کام نہ کرو۔ لیکن دیکھیے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کیا بتا رہا ہے؟ ڈھیٹ بند، تمہیں نہیں پتا ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اور آج لوگ کہتے ہیں اٹس مائی رائٹ، اٹس مائی باڈی، میک یور لاس بیونڈ مائی باڈی، میرے جسم سے اپنے رولز کو دور رکھیے۔ یعنی لوگ اس کو اب حق بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، اب ادھر سے آپ ذرا حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھیے گا، کیسے ویک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ ان کو سنبھال رہا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی بنا لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، یعنی ان کی محبتیں ان لوگوں سے نہ ہو جو گندے کام کرتے ہیں، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا جو ان پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت تھا، अलैहिस्सलाम सुबह भी करीब, और क्या सुबह करीब नहीं है? क्या बीवी पीछे क्यों रह गई? क्या नौस बिला बीवी में भी ये खराबी थी? नहीं, बीवी गैर ख़ानदान से थी, हज़रत लूत की कौम से नहीं थी, इसकी हमदर्दी अपनी कौम के साथ थी। जब कौम होमोसेक्सुअल हुई तो ये बीवी भी उनकी मदद करती थी। कभी किसी घर में खूबसूरत लड़के आते, कोई मेहमान आते, तो ये घर के ऊपर एक झंडी सी लटका देती जिससे लोगों को खबर हो जाती। यहाँ से पता क्या चला कि पीछे बेटा है, यहाँ बीवी है। नूह बेटे को नहीं बचा सके, लूत बीवी को नहीं बचा सके, ये हमारे हाफ साहब कैसे हमें बचाएंगे? ये हमारे मौलवी साहब हमें कैसे बचाएंगे? हम तो सोचते ना अगर दीनदार शौहर मिल गया तो बस हमारी खैर है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। असल बात जो है वो अमल है। नसब नाते तो अल्लाह ताला किस्मत से दे भी देता है लोगों को, लेकिन अपना काम लाजमी है। और अब इस कौम की पकड़ का वक्त आया, फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को तलपट कर दिया, ऊपर नीचे अपसाइड डाउन, और इस पर पकी हुई मट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, यानी कंटिन्यूसली ऊपर पत्थर बरसे। कहते हैं सर के ऊपर से इनके वो पत्थरियाँ गुजरती थी, छोटी छोटी बुलेट्स थी, हुक्स वाली, जैसे बुलेट्स नहीं होती गोलियाँ सुई, और उस बुलेट पे उसका नाम लिखा होता था जिसके सर पे पड़ती थी। सर से गुजरती और उनके प्राइवेट पार्ट से बाहर आती, क्योंकि ये गंदे काम दिमाग से सोच शुरू होती है और आखिरी काम इसका जो है अल्लाह ने उसी तरह की सज़ा उनको दे दी। और जिनमें हर पत्थर तेरे रब के हाँ निशान ज़दा था, और जालिमों से ये सज़ा कुछ दूर नहीं। आज भी तो ये हो सकता है ना, ये अल्लाह ने बचाया हुआ है। अल्लाह ताला हमें अपनी और दूसरों की इसलाह का ज़रिया बना दे। दुआ करें इस वक्त भी चंद लम्हे सोच के अपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचें। बहुत सख्त वक्त आ रहा है, शैतान धन धनाता फिर रहा है। हदीस में तो क़यामत जब आएगी तो दुनिया में कोई लफ्ज़ अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। लोग सड़कों के किनारे जानवरों की तरह जिना करते होंगे, और कोई गुजरते हुए अगर सिर्फ इतना कह देना कि भाई दीवार की ओट में चले जाओ, तो उसका मुकाम वो होगा जो अपने दौर में सहाबा का मुकाम था। यानी लोग ये भी नहीं करेंगे, दे डोंट केयर। वो कहते हैं इट्स ओके, माइंड योर बिजनेस। अल्लाह ताला हिदायत दे।